नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति। आपको याद होगा कि पिछली बार हमने बात की थी टेंशन की, कि किस तरह से इनर स्टेबिलिटी बहुत जरूरी हो जाती है जब कोई भी सिचुएशन आती है। बहुत बार हम बात तो करते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ गया है, अब कोई भी सिचुएशन आएगी हम उसे फेस कर सकते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि जैसे ही कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम या सिचुएशन सामने आती है हम फिर बिखर जाते हैं, फिर समझ नहीं आता कि सामना कैसे करें। ऐसे में आज इस कड़ी में यही जानने का प्रयास करें कि किस तरह से विपरीत जब हमारे सामने स्थितियां हों उनमें भी अपनी जो इनर स्टेबिलिटी है उसे कायम रख सके। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर आशा हमारे साथ इस वक्त हैं, जो कि पिछले 50 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी हैं और दिल्ली में लगभग 35 वर्षों से है। तो चलिए उनके अनुभव का लाभ उठाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। आशा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत।
थैंक यू। ओम शांति।
आपने हमें बताया था कि टेंशन जो है वो अच्छी नहीं है, और जब सिचुएशन हमें लगता है कि हमसे ज्यादा पावरफुल है तब हम घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यही होती है दीदी कि जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो हमें लगता है हमारे बस के बाहर है तो हम बिखर भी जाते हैं, उसी टेंशन में वो बिखरावट आ जाती है। क्या करें कि जिस इनर स्टेबिलिटी को हम तलाश रहे हैं, जिसका हम कई बार दम भी भरते हैं कि अब हमें समझ में आ रही है, वो कायम रख सके।
इनर स्टेबिलिटी एक बहुत बहुमूल्य चीज है और इसके होने से हमें क्या क्या लाभ हैं उसे हम जानते हैं।
बिल्कुल।
इसलिए इसका खोना हमारे लिए बहुत दर्दनाक है। लेकिन अब जैसा समय चल रहा है, इसको हम कहें इनसिक्योरिटी का समय है, अनसर्टेनिटीज का समय है,
भय का समय है, डरे हुए हैं सब लोग, पता ही नहीं कि क्या होने वाला
क्या होने वाला। आप प्लान चाहे जो मर्जी कर लें, लेकिन आपका प्लान चल पाएगा या नहीं चल पाएगा उसके लिए भी आप निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है। ऐसी सब बातें, ये भी मैं आपको बता दूं, ये बढ़ने ही वाली है, घटने वाली नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, जो मैं कर सकती हूं उस पर मुझे अटेंशन देना है। अब हम परिस्थिति से तो सामना नहीं कर सकते, हम प्रकृति से सामना नहीं कर सकते, सुनामी आई हम क्या कर सकते, किसके कंट्रोल में है, कितने अच्छे लोग वहां बीच पर थे, एंजॉय कर रहे थे, अचानक तो अचानक 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 कई बातें होंगी। लेकिन उस अचानक के पेपर के लिए मैं कैसे तैयार रहूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम कहते हैं एवर रेडी रहना। तो पहली बात तो मैं ये समझती हूं कि हमें जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तब हम उसका सामना करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो पहले तो आपका मन स्वीकार करे ना कि मैंने इसका सामना करना है।
बिल्कुल। कई बार क्या होता है, सिचुएशन आ भी गई होती है तो हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं कबूतर की तरह, हमने बिल्ली देखी नहीं
लेकिन बिल्ली छोड़ती तो नहीं। इसी तरीके से सिचुएशन तो फिर हावी हो जाती है, और कई बार हमें वार्निंग्स मिलती भी हैं, उनको भी हम अवॉइड कर जाते हैं। तो सिचुएशन को एक तो एक्सेप्ट करना कि वास्तविकता है, रियलिटी है, और दूसरा स्टेप ये है कि सिचुएशन में हम इन्वॉल्व ना हो जाएं। आप अगर बचपन को याद करें, हम लोग एक खेल खेला करते थे जिसमें 9 बिंदु होते थे जिनको हमें जोड़ना होता था, और कहा जाता था एक ही लकीर से इनको जोड़ना है, पेन उठाए बिना
पेन उठेगा नहीं। जी,
उसका तरीका क्या होता था कि 9 बिंदुओं से बाहर हमें जाना होता था, और बाहर जाकर के फिर जब हम जोड़ते थे ना तो सारे 9 बिंदु एक ही लाइन से जुड़ जाते थे। इसी तरीके से जब किसी बात में हम उलझे हुए होते हैं ना, तो हम उस परिस्थिति को, घटना को, बात को अच्छे तरीके से न देख पाते हैं न समझ पाते हैं। तो बाबा ने हमें बहुत सुंदर एक विधि बताई है जो अपनी भारतीय संस्कृति में भी है, और वो है साक्षी दृष्टा। आप कोई बात होती है दूसरे के ऊपर घट रही है, आप उसे ऑब्जर्व करके डिसीजन कितना बढ़िया देते हैं, भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो ऐसे। जब वो चीज स्वयं पर आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो साक्षी दृष्टा होकर के जब हम परिस्थिति को देखेंगे तो हम उसको राइट रूप से असेस कर सकेंगे, एडजस्ट कर सकेंगे, और फिर हम उसका रिस्पांस भी तैयार कर सकते हैं।
लेकिन यही दीदी बहुत से लोगों के साथ ये जुड़ा होता है, क्योंकि हम इमोशनली इतने जुड़े हुए होते हैं। लोग ये कहते हैं कि मैं रो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, उस वक्त मैं क्या देख सकता हूँ, मैं कहाँ कैसे साक्षी बन सकता हूँ, जब इतनी मुसीबतों का पहाड़ मुझ पर टूटा हुआ है, मेरे पास पैसा नहीं है, या जो भी जिस भी हालात में होते हैं लोग, जब वो ऐसे इस सिचुएशन में होते हैं, तब अगर उनसे हम ये कहें कि साक्षी दृष्टा आप बन सकते हैं, सो दे रिजेक्ट द होल यू नो थॉट प्रोसेस।
साक्षी दृष्टा ना बने लेकिन कारण तो समझे ना,
वजह।
अगर कारण समझेंगे तो उसका निवारण कर सकेंगे। वो बिना पुरुषार्थ के और बिना कारण ढूंढे सीधे निवारण पर जाएं तो होने वाला नहीं है। अगर मैंने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बात को, तो मेरे को उसको प्रॉपरली एनालाइज करना होगा, प्रॉपरली उसे समझना होगा, तब। और अचानक सारी प्रॉब्लम एक ही दिन में तो
आने वाली नहीं,
एक्चुअली होने वाली भी नहीं है।
प्रिपेयर, यू नो वी कैन प्रिपेयर
स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। आज मैं थोड़ा कर सकती हूँ, कल और थोड़ा करूंगी, फिर और थोड़ा करूंगी, करते करते प्रॉब्लम को मैं अपने कंट्रोल में ले सकती हूँ। लेकिन मैं चाहूँ कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, ये नहीं होगा। तो एक तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, दूसरा उसे एक ऑब्जर्वर के रूप से प्ले करना, रोल कॉन्शियस ना होकर के अगर अपना दृष्टिकोण ऐसा बन जाए साक्षी दृष्टा का, तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। तीसरी बात मैं सोचती हूँ कि अगर हम ये सोचें कि जो कुछ हो रहा है ये मेरे बेनिफिट के लिए, कहीं ना कहीं मेरा इसमें लाभ होगा। कभी कभी हम सोचते हैं ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। हो सकता है, और होता भी है, जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं। कभी कभी हम लोग जो बातें हमें सामना करनी पड़ रही हैं, वो हमें एक्सपीरियंस देखे जा रहे हैं। और एक्सपीरियंस जीवन की वो निधि है जिसके आगे और सब धन धूर समान है। एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम उससे बाहर आते हैं और औरों को भी निकाल सकते हैं। तो एक तो ये चीज है कि मैं अपने आप को कैसी भी विकट परिस्थितियां आए, अगर परिस्थिति के साथ मैं भी अनस्टेबल हो जाऊंगी तो मैं उसका सामना कदापि नहीं कर सकती। मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूँ। आप सबको 9/11 की घटना याद है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कैसे जब आग लगी थी, हुआ था, तो उस समय हमारा एक भाई था जो 62nd फ्लोर पर था। उसने देखा अचानक ये सब क्या हो रहा है, बट उसने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को खोया नहीं। सब तरफ देखा, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं पर गेट से जाके वापस आ रहे हैं, बहुत कुछ, परंतु उसने अपने आप को कंपोज्ड रखा। सारा वो नीचे आया और कईयों को बाहर निकालने में उसने मदद की। यू कैन बी हेल्पफुल। और अगर पैनिकी हो जाएंगे then we destroy ourselves, we destroy others also. तो एक तो ये चीज है। ऐसे थोड़े समय पहले मैं श्रीलंका में थी, तो वहां पर जो अपने भाई बहन क्लास में आते हैं, उनमें से एक फैमिली थी जिसने अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि जिस समय सुनामी आई उस समय वो वहां पर मौजूद थे, और कैसी क्या कहूं विडंबना कि अपनी बेटी को, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसको वो सी ऑफ करने गए हुए थे। और पिकनिक के रूप से बीच पर थे। अचानक सुनामी आई, सब इधर उधर हो गए, लेकिन इस महिला ने अपनी जो मानसिक एकाग्रता है उसे खत्म नहीं किया। वो सुनामी की लहरों में थी और वो लहरों ने जाकर के उसको ऐसे स्थान पे खड़ा कर दिया जहां वो होटल जहां ठहरी हुई थी उसकी खिड़की की सलाखों को पकड़ करके वो खड़ी हो गई, लटक रही थी,
इतना ऊपर पहुंच गई,
लटकी रही शायद 2 घंटा, कितना समय पूरा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, खड़ी रही। और उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा पानी रिसीट हुआ वो गई, देखा, बहुत कुछ लंबी कहानी है, लेकिन वो स्वयं को भी बचा पाए और उसके साथ कुछ अपने सदस्य थे उनको भी। तो एक अपनी जो मानसिक स्थिरता है अगर हम इसको बना करके रखते हैं, कैसे भी स्थिति आए परिस्थिति आए वो तो चली जाएगी, सदा के लिए तो नहीं आई है ना, बात आई है जाने के लिए, लेकिन बात बैठ नहीं जाती है, हम उसे अपने मन में बिठा लेते हैं,
बार बार रीलिव करते जाते हैं, जीते जाते हैं, निकल भी गई एक बार तो फिर जीते रहेंगे उस चीज़,
और उसको जो रिपीट करते हैं ना तो रिपीट करते करते फिर हम उसके स्वरूप बन जाते हैं, और स्वरूप बनने के कारण जो मुझे एक्ट करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि मैं अपने आप को उस समय स्थिर रख सकूं, उसके लिए मैं एक साक्षी दृष्टा का स्वरूप हूँ। और साथ ही साथ अगर मैं अपने आप को सोल कॉन्शियस स्टेज पे रखती हूँ, सोल कॉन्शियस, जब हमें पता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, संसार की कोई भी चीज आत्मा का नाश कर नहीं सकती, अगर कुछ नाश होना ही है तो उन्हीं सब बातों का जिनको मैंने अपना समझ रखा है, जो मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, लेकिन हमने उन्हें अपना समझ रखा, वही चीजें तो जाएंगी ना, जो विनाशी है, संसार से ली और संसार को ही वापस होनी ही है, आज नहीं तो कल, तो मैं किस बात से भयभीत हूं, किस बात से मैं डरूं। तो सोल कॉन्शियस होने से हमारी मन और बुद्धि की एकाग्रता बनी रहती है, एकाग्र होने कारण हम स्थिर भी होते हैं, और स्थिरता से जो परिस्थिति का सामना करने में हमें 2 प्रमुख शक्तियों की आवश्यकता होती है, एक है परखने की शक्ति और दूसरी है निर्णय की शक्ति। परख आप तब सकते हैं जबकि आप स्वयं स्थिर हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप चीज को ठीक से असेस नहीं कर पाएंगे, कितनी प्रॉब्लम है वो भी आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पारखी बुद्धि होने के लिए मेरे को अनिवार्य है कि मैं सोल कॉन्शियस स्टेज में।
आई थिंक कई बार क्या होता है कि सिचुएशन इतनी ग्रेव होती नहीं है जितनी शुरू में लगती है, सो इफ वी आर एबल टू असेस इट कि कितनी हानि हुई है, तो सही तरह से, तो वो उतना डीप नहीं जाता है इफेक्ट, नहीं तो हम इतना डीप इफेक्ट ले लेते हैं,
हम सोचते हैं बस जीवन का यज्ञ
खत्म हो गया, सब कुछ
जीवन ही खत्म हो गया, ऐसे थोड़ी है। तो उससे हम लोग बहुत एक्चुअली ये सब बातें तब है हम अपने आप को बहुत शॉर्ट डिस्टेंस का, बहुत शॉर्ट साइटेडनेस को मैं कहूंगी, बहुत जैसे कि हमारी डेप्थ है ही नहीं, ब्रॉड माइंडेडनेस और जीवन के अंदर डेप्थ है ही नहीं, इट इज नॉट द एंड ऑफ द होल थिंग, जस्ट इन द पासिंग इट इज हैपनिंग। हम इससे और ऊपर ना, बीरबल की कहानी याद करिए, वो छोटी एक रेखा खींची, उसको छोटा करने की विधि क्या है, रेखा खींच दो, अपने आप को थोड़ा बड़ा कर ले तो परिस्थिति कुछ में। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जब आप एरोप्लेन में जाते हैं नीचे कितने बड़े बड़े ट्रक्स हैं, कितनी वो आपको क्या नजर आते हैं, छोटे छोटे, अगर मैं अपनी स्थिति को ऊंचा ले जाऊं तो मुझे ये सब परिस्थिति जो बहुत छोटी नजर आएगी, लेकिन अगर उसी लेवल पर रहूं तो मुझे लगे तो मेरी ये खतरे की चीज है। तो एक तो असेस करने के लिए परखने की शक्ति चाहिए, दूसरा परखने के पश्चात डिसीशन मेकिंग चाहिए
कि यहाँ क्या करना चाहिए,
निर्णय, और निर्णय भी मेरा राइट होना चाहिए, निर्णय भी क्विक होना चाहिए। डिले ऑफ जस्टिस इज इनजस्टिस। तो ये दोनों शक्तियां वो भी मेरी तब संभव हैं जबकि मैं अपनी स्थिति में स्थित हूं। और हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि विकट परिस्थितियां जब आती हैं, जो हिडन हैंड परमात्मा का है क्या वो हमें नहीं बचाएगा? रचयिता तो वो है ना, क्या वो मुझे इंस्पायर नहीं करेगा? लेकिन मैं अलाउ तो करूं। एक बार ऐसी दुर्घटना कहीं हुई थी तो बहन ने कंप्लेन की कि भाई परमात्मा ने मुझे मदद क्यों नहीं की। उसको आंसर मिला कि परमात्मा तो तुम्हें मदद कर रहा था, लेकिन तुम्हारा रिसीविंग सेट ही कहाँ ठीक था। तो हमारा रिसीविंग सेट ठीक है या नहीं, मैंने अपने आप को इतना अगर उलझा करके रखा हुआ है तो परमात्मा अगर मुझे इंस्पिरेशन दे भी रहे हैं, मैं उस पावर को कैच कैसे करूं?
वी फ्लैश ऑफ विजडम अगर उस वक्त आता है तो दैट एक्चुअली विल कम ओनली अगर यहाँ पे क्लैरिटी
है। इसको हम लोग कहते हैं टचिंग पावर एंड कैचिंग पावर। कि हम अपनी मनसा को इतना शांत, शीतल और उसे खाली भी थोड़ा रखें ताकि हम परमात्मा की प्रेरणा को कैच कर सकें। परमात्मा हमारे पिता हैं और पिता अपने बच्चों को मदद न करें ये हो नहीं सकता।
बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली। ये कंप्लीट फेथ जो है कि वो हम भी एज पेरेंट कभी ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी मदद ना करें। हो सकता है उनकी सिचुएशन को हम ना बदल पाए लेकिन मदद करने के लिए तो हम हर बार जाते हैं। दीदी यहाँ एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सिचुएशन जब आती है, ये बात समझते समझते जब हम जिंदगी जी रहे होते हैं तो सिचुएशन जब आती है तभी हम ये बात लागू करें ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए आई थिंक वी हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि सिचुएशन तो कभी भी आ जाएगी। तो उसकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए अपने जो सशक्तिकरण की बात है, जो इनर स्टेबिलिटी को हमेशा मेंटेन करने की बात है, हाउ कैन वी डू इट? हाउ इज इट प्रिपरेशन, यू नो, उसके लिए क्या तैयारी करके रखनी चाहिए?
हम लोग कहते हैं कि अपने आप को सदा ऐसी सिचुएशन तैयार रखो। तैयार रखने से भाव ये है, देखो अगर मेरे लगाव होंगे टू मैनी बहुत चीजों से बिखरे हुए तो जिस समय वो मेरे से छूटेंगे तो मुझे दुख होगा। तो चीज को मान लीजिए मेरा वस्तुओं में है, मान लीजिए मेरा अपने बच्चों में है, मेरे अपने रिलेटिव्स में है। अगर मैं शुरू से ही ये अभ्यास अभी से ही करूं कि वो मेरे साथी हैं, सब कुछ है, परंतु आखिर तो ह्यूमन बीइंग ही है ना, एक ना एक दिन तो मैंने भी शरीर का त्याग करना है, उन्होंने भी। हम सब कुछ करें परंतु लगाव ना रखें। मोह जो होता है ना वो दुखी करता है, तो मोह ना रखें, स्नेह रखें, कर्तव्य परायण हो। अपनी ड्यूटी से हमें भागना नहीं है, ड्यूटी भी अपनी पूरी करनी है, परंतु जैसे एक ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी सारे काम करता हुआ भी निश्चिंत रहता है, ऐसे ही ट्रस्टी की तरह हम अपने सारे काम करते हुए भी अलगाव की नीति में रहें।
लेकिन इस पर लोग बहुत बार ये कहते हैं कि अगर मोह नहीं है तो प्यार थोड़ा कम हो जाता है। पेरेंट का कैसे नहीं होगा कि मोह ना हो बच्चे से?
प्यार और मोह दो चीज हैं। स्नेह सुख देता है, मोह दुख देता है। मोह को विकार कहा गया है, स्नेह को गुण कहा गया है। स्नेह आत्मा की मूल वृत्ति है, स्नेह जो है वो आत्मा का ओरिजिनल गुण है, मोह विकृति है, स्नेह की विकृति है। जहाँ अटैचमेंट होती है, जहाँ पर हम किसी चीज को अपने कंट्रोल में उसमें रखना चाहते हैं,
ओनरशिप आ जाती है,
हाँ, पोजेसिवनेस, वो है मोह। और जो स्नेह है वो सबके प्रति
वो फ्लो है एक्चुअली, वो बहाव,
उससे सुख मिलता है। तो स्नेहासक्त वृत्ति का होना सर्व के प्रति वो अच्छा है, परंतु अगर हमारी मोह वाली वृत्ति हो जाएगी ना तो उससे हमें दुख हो। तो कहा जाता है कि स्नेह दो परंतु मोह न रखो। तो ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट में भी ये बात आती है कि आप सब कुछ कर रहे हैं पर ड्यूटी कर रहे हैं और उससे अभाव है, डिटैच्ड भी हैं साथ साथ। तो ये चीज हमें बहुत मदद करती है। साथ ही साथ मानसिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि अगर मैंने जाना ही है तो किस चीज से राग और किस चीज से द्वेष, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें किसी भी प्रकार की बात का सामना करने के लिए। ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, क्यों नहीं, थोड़े से दिन हैं, जितने दिन जिंदगी के हैं क्यों नहीं हम सबके साथ प्रेम प्यार बंधुत्व के भाव से रहें, जिससे कि अपना भी मन खुश रहे और दूसरों को भी हम खुशी प्रदान कर सकें। एक ये एटीट्यूड हम अपना सकते हैं, खुश रहो और खुशी का दान भी करो। हमारे यहाँ बहुत सुंदर हमारे एक दीदी हैं, वो कहते हैं दिल खुश मिठाई खाओ और दिल खुश मिठाई खिलाओ, खुशी जैसी खुराक नहीं है। अगर ये चीज हम लेते हैं औरों को भी खुश करें, फिर देखो कन्वेन सबसे अच्छी चीज जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं क्या दे सकते हैं। आज की लाइफ ऐसी है ना, कोई किसी से लेना चाहता है, कोई नहीं, हर एक अपने आप में संपन्न है, कोई किसे लेना नहीं चाहता। एक चीज है जो हर एक कोई एक दूसरे से चाहता है, तो वो क्या है, वो है स्माइल, मुस्कुराहट। हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा हर एक को प्रिय लगता है, और फ्राउनिंग फेस सब घबराते हैं। तो क्यों नहीं हम एक दूसरे को स्माइल दें, और स्माइल देने से आप देखिए हम कितनी अच्छी वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं। आप बच्चे को स्माइल दें, बच्चा आपका दौड़ा दौड़ा आएगा, आप थोड़े से सीरियस हो जाएं बिल्कुल आने से मना कर देगा। आप ऑफिस में जाते हैं, किसी व्यक्ति के साथ आपकी कुछ कल गड़बड़ भी हो गई, लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्माइल दे देते हैं वो व्यक्ति भी सब कुछ भूल जाता है, नॉर्मल चीज हो जाती है। तो जो हमारी लाइफ है इसको भी हम सुखद बना पाते हैं जब अपनी मानसिक स्थिरता रखते हैं और स्टेबिलिटी।
दीदी यहाँ स्टेबिलिटी की बात सिचुएशन में जब है तो कई बार देखते हैं कि कई लोग हैं जो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं इवन इफ द सिचुएशन कम्स, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें वो मेंटेन किए रखते हैं, कुछ भी ना बिखरते हैं ना कुछ। लेकिन अक्सर देखा ये है कि सिचुएशन थोड़ी सी आगे गुजरती है ये, तब उनके सारे जो स्टेबिलिटी मेंटेन की थी वो तब बिखरना शुरू हो जाता है। तो वो भी किस हद तक सही है और कैसे वो भी ना हो, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि सिचुएशन को तो उन्होंने स्टेबल रह के निकाल लिया, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं उनकी बॉडी पे, कहीं ना कहीं पूरे उसके पूरे व्यवहार में, या कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है।
इसमें दो चीजें अगर व्यक्ति करे ना, एक तो ये परम विश्वास हो कि ये सिचुएशन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, मैं इसको फेस कर रहा हूं या फेस कर रही हूं और इसे मेरा कल्याण है, ड्रामा कल्याणकारी है, इसे मेरा नुकसान होने वाला नहीं है। अगर मुझे इस बात के ऊपर पूरा फेथ है, क्योंकि जिस दौर से आज के वक्त हम गुजर रहे हैं
सिचुएशंस ऐसी बहुत सारी आने वाली
है, तो परमात्मा कल्याणकारी है, वो अकल्याण नहीं चाहता। दूसरी बात, जो युग है वो भी कल्याणकारी है, क्योंकि इसके बाद सत्युग नहीं आना है, मुझे अगर पुशिंग भी मिलेगी तो आगे सत्युग की ओर ही मिलेगी, और इसे मेरा कहीं ना कहीं भला समाया हुआ ही है। एक तो अगर ये विश्वास कि मेरा इसमें कल्याण है, और दूसरा परमात्म स्मृति, शिव बाबा की याद, जितनी शिव बाबा की याद होती है लाइफ में, तो उतना मेरी वो जो स्थिति जिसका मैंने सामना किया उसको मैं सस्टेन कर पाऊंगी। अन्यथा जैसे होता है ना, कोई चीज आई सा तो शरीर की सारी एनर्जी सामना करने में लग जाती है, लेकिन बाद में वी गेट डेप्लीटेड ऑफ एनर्जी। वो ना हो, उसके लिए अपनी जो बैटरी है, जिसको हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, बैटरी को रिचार्ज करना अनिवार्य है। और रिचार्ज करने के लिए और कोई साधन नहीं है सिवाय परमात्मा की याद के। तो उन्हें प्यार से याद करें।
और जैसा कि आपने कहा कि प्रिपरेशन के दौरान भी अगर हम तैयारी भी कर रहे हैं हर रोज, क्योंकि सिचुएशन तो कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। उसमें मेडिटेशन और साक्षी भाव से पूरी जिंदगी को देखना कितना जरूरी हो जाता है।
ये आवश्यक, मेडिटेशन, साक्षी दृष्टा, प्लस उसके साथ अपने प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, परिस्थिति के प्रति, और ये बेनिफिशियल है मेरे लिए, और साथ साथ मैं अपने मन को इतना तो खोल के रखूं जो मैं परमात्मा की प्रेरणा को कैच कर सकूं।
बिल्कुल, उसके हर सिग्नल को लेने को तैयार हो। हमारी ट्यूनिंग ऐसी होनी चाहिए। दीदी, आज आपसे बहुत अच्छी बातचीत रही, और ऐसी परिस्थितियां जिंदगी में आती ही रहती हैं, हम में से हर कोई दो चार होता ही है उनसे, लेकिन जब आती है तब हमारा असली टेस्ट होता है कि हम कितने स्थिर रह पाते हैं। आज आपके साथ बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
थैंक यू।
कोई बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आपके पास है, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555।
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। आने वाली कड़ियों में फिर मुलाकात होगी। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति।
शांति।